हरि ओम नारायण 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 नारायण। आज वैशाख शुक्ल पंचमी है, भगवान श्री शंकराचार्य की जयंती है। तो यहां तो प्रतिदिन अद्वैत वेदांत की ही चर्चा होती है, इसलिए शंकराचार्य तो यहां जीवंत हैं। फिर भी उनकी जयंती होने के कारण उनको विशेष रूप से थोड़ा सा दो चार मिनट में याद कर लेते हैं। भगवान शंकराचार्य ने कोई अलग सिद्धांत नहीं बनाया। जो सिद्धांत वेदों का भूल गया था लोगों को, और विधर्मियों ने जिसको क्षत विक्षत कर दिया था, उसी को उन्होंने पुनर्जीवित किया। कर्म के क्षेत्र में यद्यपि उन्होंने कर्मकांड से मोक्ष होता है इस बात का खंडन किया, परंतु वर्णाश्रम धर्म को ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के लिए उन्होंने आवश्यक बताया। अज्ञानी अगर वर्णाश्रम के अनुसार नहीं चलेगा तो कभी मोक्ष का अधिकारी नहीं होगा, और ज्ञानी यदि वर्णाश्रम के अनुसार नहीं चलेगा तो वो लोगों को सन्मार्ग पर नहीं लगा सकेगा, क्योंकि लोग तो यही देखेंगे अरे ज्ञान प्राप्त करके ये ऐसा आचरण करते हैं तो फिर ज्ञान की क्या महिमा है। नारायण। तो ज्ञानी वर्णाश्रम का पालन इसलिए करता है कि उसे अपने लिए तो कुछ करना है नहीं, और वेद परमात्मा की वाणी है इसलिए उसकी आज्ञा का पालन करना हर व्यक्ति का धर्म है। उपासना के क्षेत्र में उन्होंने जो क्रांति की वो ये थी कि उपासना आवश्यक है, लेकिन वो तो किसी एक जगह नाम रूप का आधान करके ही हो सकती है। शंकराचार्य भगवान के समय में इतने देवी देवताओं की उपासना समाज में प्रचलित थी, आज भी है, क्योंकि समाज जो है वो बुद्धि से नहीं चलता, समाज वासनाओं से चलता। जहां जिसकी वासना जिस रूप से पूरी होगी, कोई कह दे कि एक लोटा इस पत्थर पर डाल आओ पानी, देख लेना कल को वहां भीड़ लग जाएगी, बिना इस बात को सोचे हुए कि क्यों क्या बात, अरे चढ़ाना है तो शिवजी हैं ही भगवान के, उन पर चढ़ाओ जाके। चौराहा पूछते हैं, भूत पूछते हैं, प्रेत पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण के टाइम में भी ये था चक्कर, भूताने भूते जा। तो मदभक्ता यान्ति माम अपि, जो मेरा भजन करते हैं वो तो मुझको प्राप्त होते हैं, जो भूत प्रेतों को पूजते हैं वो आखिर में भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। तो क्या भूत प्रेत बनना चाहते हैं? तो उन्होंने क्रांति ये की कि अनेक देवी देवताओं की पूजा को संकुचित करके पांच में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, पंचदेवोपासना का प्रचलन उन्होंने चालू किया। विष्णु भगवान, शंकर भगवान, सूर्य, गणेश और शक्ति। तो ये सन्यासियों के लिए नहीं है, गृहस्थों के लिए। तुम्हें यदि उपासना ही करनी है तो इन पांच में से जो भी तुम्हें अनुकूल पड़ता हो उसकी करो, और बाकी चार को हाथ जोड़ो। ये नहीं कि पांचों की माला टरका और रोजाना, अपना एक इष्ट होना चाहिए और बाकी सबके प्रति आदर बुद्धि होनी चाहिए। मंदिर जाओ, तीर्थ जाओ, स्नान करो, ये सब उसमें आ जाता है उपासना के क्षेत्र में। और ज्ञान के क्षेत्र में तो आपको मालूम ही है, आत्मा को ब्रह्म बताने वाला सिवाय अद्वैत वेदांत के और कोई न वेदांत है, न कोई पुराण है, न कोई है। जितने भी ये रिलीजन के नाम पर चल रहे हैं, धर्म के नाम पर चल रहे हैं, ये सब आपको आत्मा का स्वरूप का दर्शन नहीं कराते। ठीक है, वो उपासना की कोटि में है, हम उनका खंडन नहीं करते, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति जो है वो तो हमको होगी ना, तो हमें अपना ही स्वरूप ज्ञात नहीं है तो हमारी क्या मोक्ष होगी। और सब इसका ही विरोध करते हैं, तारीफ की बात यह है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रस्थानत्रय के ऊपर भाष्य लिख करके एक ऐसा संबल आगे की पीढ़ियों के लिए छोड़ दिया है। आज भी लोगों को वो भाष्य भी समझने मुश्किल है, और उन भाष्यों पर भाष्यों पर भाष्यों पर भाष्य लिखते चले जा रहे हैं लोग। एक आदमी अपने जीवन काल में उन सब वेदांत लिटरेचर को नहीं पढ़ सकता है। तो खैर, जो पंडित लोग हैं वो अपना पढ़ें, लेकिन जितना आवश्यक है वो तो सबको पढ़ना पड़ता है। ये जो स्वाध्याय का प्रसंग यहां चलता है और भी जगह चलता है, तो उसकी यही आवश्यकता है कि जो प्रवचन में आप लोग अद्वैत वेदांत के बारे में सुनते हैं उसको फर्स्ट हैंड स्वाध्याय के द्वारा फिर देख लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है, हालांकि लोग इससे विपरीत भी बोलते हैं, श्रवण आवश्यक तो है, लेकिन संस्कार जितना गहरा पढ़ने से बनता है उतना गहरा सुनने से नहीं बनता है। क्योंकि जब तक वक्ता में बहुत ज्यादा श्रद्धा न हो तब तक भगवान ने दो कान दिए हैं, एक से सुनते हैं दूसरे से निकल जाता है। और वक्ता में यदि बहुत श्रद्धा है तो बिल्कुल ऐसे बैठेंगे, सुनते रहेंगे, कहीं कोई शब्द निकल न जाए। नारायण, तो गुरुमुख से श्रवण करना चाहिए, वो बात सही है, लेकिन सप्लीमेंट उसको स्वाध्याय से जरूर करना चाहिए। केवल श्रवण से ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन अविद्या निवृत्ति के लिए, मनन निरध्यासन के लिए आपको स्वाध्याय आवश्यक है। अब उसमें कठिनाई यही होती है कि भाई वो संस्कृत में है तो कोई बात नहीं है। मैं तो कह देता हूं उनके भैया, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। सब भाषाएं जो है कोई मां के पेट में से लाता है, पहले बाहर निकल आता है, फिर मां उसकी बोली सुन सुन करके तो मातृभाषा का ज्ञान हो जाता है, फिर जिस स्कूल में जाता है फिर वहां की भाषा का ज्ञान हो जाता है। भाषा का ज्ञान कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, और ईश्वर की कृपा हो जाए नारायण तो संस्कृत भी समझ में आने लगती है, और नहीं आवे तो हिंदी इक्विवेलेंट्स तो हैं ही उनके, वो भी कोई कम संस्कृत के थोड़े ही हैं। तो ये तीन उनकी देन है। और चौथी देन जो है उनकी ये है कि उन्होंने ये दशनामी संप्रदाय सन्यासियों का जो खड़ा किया, इसकी वजह से आज अद्वैत वेदांत जिंदा है। गृहस्थ लोगों को फुर्सत नहीं है, कमाई धमाई और सामाजिक जिम्मेदारियों से, लेकिन आज रोना यह है कि संन्यास आश्रम में आने के बाद भी लोग इसी से मुकर जाते हैं। बोले छोड़ो, क्या है, यही तो है कि आत्मा ब्रह्म है, बस हो गया एक दफे, बार बार इसका क्या रटना। एक महाराज जी के शिष्य ही थे, तो पहले वेदांत से नीचे कुछ बोलते ही नहीं थे, फिर एक दिन मिले तो बन के, आजकल आप कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं? बोले मैंने वेदांत बिल्कुल छोड़ दिया। मन का, क्यों? अरे उसमें रस नहीं है, बुद्धि का व्यायाम है। अब जिसको खुद रस नहीं आ रहा है वो दूसरे को क्या रस देगा? मन के अब किस में रस आ रहा है? बोले अब मुझे भागवत में रस आ रहा है। तो महाराज श्री कहते हैं कि जिसकी ललित वृत्ति होती है वो वेदांत में टिक नहीं पाता। तो रजोगुण की प्रधानता जब हो जाती है जीवन में तो वृत्ति को जो है रस की ज्यादा चिंता रहती है, सत्य की चिंता कम हो जाती है। और सात्विक वृत्ति जब रहती है तब रस की चिंता कम रहती है और सत्य की चिंता ज्यादा रहती है। सत्य ही रस है, रसो वही स। और अगर इसके सत्य के अलावा रस की बात करोगे तो संसार के विषयों में तो रस है ही, ले मजे उसके। इस चक्कर में ही क्यों पढ़ते हो? तो ये संन्यास की जो उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन चालू किया दशनामी संप्रदाय, उसका मतलब ही ये था। उसमें ऐसा नहीं कट्टरता नहीं है, उसमें तीर्थ भी हैं, उसमें आश्रम भी हैं, उसमें सागर भी हैं, उसमें पर्वत भी हैं। ये जैसे गोत्र होते हैं ना, तो ये दशनामियों के दस गोत्रों में सरस्वती हैं। तो आश्रम का मतलब है कि जो आश्रम बना करके रहें, पर्वत का मतलब है कि जो पर्वत पर रह करके वेदांत का विचार करें, सागर का मतलब है जो समुद्र किनारे रह करके परमार्थ का चिंतन करें, सरस्वती का मतलब है कि जो विद्या में ही रत रहे, इधर उधर में मन ना भटकावे। मतलब तो सब साफ है लेकिन अब वो रूढ़ उनके अर्थ ऐसे हो गए हैं कि वहां भी लड़ाई होती है ना, तो वो तो समय की विकृतियां तो सब में आती हैं। लेकिन हमको सन्यासी समाज का भी ऋणी होना चाहिए कि वो कम से कम इस प्रथा को वो आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से बढ़ा रहे हो। बुद्ध धर्म क्यों खत्म हो गया? कितना विशाल उसका व्यापक हो गया था, अब नाम का रह गया है। भारतवर्ष के बाहर जो बुद्ध धर्म है वो सिर्फ नाम का है, वहां कोई आचार विचार बौद्ध का नहीं है। जैसे कहते हैं ना, हम तो भाई ब्राह्मण हैं। अच्छा तुम ब्राह्मण तो हो लेकिन ब्राह्मण का कोई धर्म कर्म करते हो कि नहीं करते हो? तो जन्म से ब्राह्मण है, हम तो वैश्य हैं साहब, हम तो क्षत्रिय हैं साहब। तो जन्म से तो हो गए लेकिन उनके हिसाब से कोई धर्म कर्म कुछ करते हो कि नहीं करते? तो जो विदेश के बौद्ध हैं वो सिर्फ गिनती करने के लिए हैं अपने, उनके कोई धर्म ग्रंथ भी नहीं, उनमें भी बहुत सारे भेद हो गए। तो क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने सबके लिए संन्यास कर दिया। जो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो वो ही सन्यासी हो जाए, अब जो अनधिकारी हैं वो भी घुस गए उसमें। तो मतलब खत्म तो होना ही था। और आज जिनको हम महातीर्थ बोलते हैं वो भी शंकराचार्य भगवान की कृपा से ही है, पुनरुद्धार किया उन्होंने। बद्रीनाथ है, नारायण। तो ऐसे शिवावतार भगवान शंकराचार्य वो आज के दिन हम स्मरण करते हुए उनके चरणों में श्रद्धावनत होकर के प्रणाम करते हैं। चले अपने प्रसंग पे, ये भी तो अद्वैत का ही प्रसंग है। तो बात शुरू हुई थी कि ओंकार उपासना करनी चाहिए। अब देखो उपनिषद ही उपासना से प्रारंभ कर रहा है। तो जो लोग वेदांतियों पर आक्षेप करते हैं कि ये उपासना का विरोध करते हैं, नारायण वो मूल को तो पढ़ते ही नहीं है, ऐसे ही किसी से कुछ सुन लिया और मान लेते हैं। छह छांदों के उपनिषद में निरी उपासना ही उपासना भरी पड़ी है। तो अंतःकरण की शुद्धि का एकमात्र साधन ईश्वरोपासना है। ये देवोपासना और लोकोपासना, इनसे अलग करके ईश्वरोपासना जब की जाती है तब वो अंतःकरण शुद्धि का हेतु होती है। देवोपासना करने से कामनाएं बढ़ती हैं और ईश्वरोपासना करने से कामनाएं घटती हैं। और लोकोपासना करने से तो सभी कुछ बढ़ता है, कामना भी बढ़ती है नारायण, और ऐशनाएं भी सब बढ़ती हैं, सभी ऐशनाएं बढ़ती हैं। और ईश्वरोपासना करने से कामना घटती है। अंतःकरण की अशुद्धि क्या है? ये कामना ही अंतःकरण की अशुद्धि है। अंतःकरण माने ही कामनाओं का समूह है। अगर ये अंतःकरण ना होता, माने सूक्ष्म शरीर ना होता, तो इस स्थूल शरीर की जरूरत ही नहीं थी। वो सब कामनाओं को लेकर के ही तो ये स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है और उसी की पूर्ति के लिए ये स्थूल को ठेलता पेलता रहता है। अब आत्मा की तरफ यदि चलना है तो कामनाओं को शांत करना पड़ेगा। शांत माने शून्य हो जाए ऐसा नहीं है, समुद्र की तरह से आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठा समुद्रमापा प्रविशन्ति यदवत् तदवत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। आप कामनाओं की पूर्ति के रास्ते पर चलेंगे तो शांति नहीं मिलेगी। और आप अपने आप को समुद्र की तरह से समझें, समुद्र में सारी नदियां, संसार की कोई नदी ऐसी नहीं है जो समुद्र में जाकर न मिलती। क्यों? क्योंकि समुद्र जीरो लेवल पे है और बाकी जितनी भूमि है वो सब ऊंची है। तो अगर हम अपने अंतःकरण को भी जीरो लेवल पे कर लें तो सारी कामनाएं जो है दौड़ दौड़ करके उसमें आके भर जाएंगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। समुद्रम आपा प्रविशन्ति, नदियां जो है दौड़ दौड़ करके उसमें जाती, किसी को निमंत्रण नहीं देता समुद्र। ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी जो है ना, उसमें महादेव देसाई ने पीछे अपेंडिक्स में ये बात लिखी है। बोले हैप्पीनेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजायर्स। तो गीता भी यही कह रही है, जो कामनाओं के पीछे पीछे चलता है उसको शांति नहीं है। कामनाएं पूरी होती हैं तो हुओ, और नहीं होती हैं तो क्या है? समुद्र में जल की कमी तो है नहीं, न कभी उसमें बाढ़ आती है न कभी उसमें सूखा पड़ता है। ये डराते रहते हैं ये वैज्ञानिक लोग, इतने करोड़ वर्ष बाद पानी सब समाप्त हो जाएगा। अरे हो जाएगा तो हम और तुम तो नहीं रहेंगे, जो है पहले उसका तो लाभ ले लो। सूर्य खत्म हो जाएगा, काजी जी क्यों लटे कि शहर के आदेश, जिसने ये सृष्टि बनाई है नारायण वो सब व्यवस्था करता है। अगर मरना ही है तो मर जाएंगे, क्या हुआ, पैदा भी तो उसने ही किया है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निरममो निरहंकार स शांति मदीरच। तो ओंकार उपासना ये ईश्वर उपासना का मुख्य साधन है, क्योंकि इसमें आप किसी भी इष्ट की आकृति भी ला सकते हो और नहीं भी ला सकते हो। माने सगुण ब्रह्म का भी वाचक है और निर्गुण ब्रह्म का भी वाचक है। अब ये जो इसमें जितनी है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद की चर्चा हुई, तो आठवें मंत्र से इनका फल बताया है। सातवां मंत्र तो अभी होना है, हम तो छह तक पहुंचे हैं, तो आठवें मंत्र में इस उपासना का फल बताया है। आप ध्यान तो ओंकार का कर रहे हैं और भाव ये कर रहे हैं कि मैं विराट हूं। प्रथम पाद यही है ना, वैश्वानर। ध्यान तो ओंकार का कर रहे हैं लेकिन भाव क्या कर रहे हैं कि मैं विराट हूं। तो विराट माने जितने व्यष्टि व्यक्ति हैं, इन सबको जो प्राप्त होता है वो आपको सहज ही प्राप्त हो जाएगा। एक तो ये फल बताया इसमें, दूसरा फल ये बताया कि प्रथमम पादा, आप सबसे प्रथम हो जाएंगे। माने आपकी गिनती जो है वो टॉप नॉच स्टार्स में होगी। उदाहरण रैक्व का आपको सुनाई दिया था। अच्छा, ध्यान तो आप ओंकार का करते हैं लेकिन भाव ये करते हैं कि मैं हिरण्यगर्भ हूं। हिरण्यगर्भ माने समस्त जीवों का मूल केंद्र। इसका क्या फल होगा? आपका जीवन तो नष्ट हो जाए और सुख जो है वो चारों तरफ आपके बरसे। और ध्यान तो आप ओंकार का करते हैं और भाव ये करते हैं कि मैं प्राज्ञ हूं, अर्थात प्रलयकालीन जो ईश्वर की का स्वरूप शास्त्र ने बताया वो मैं हूं। मैंने निर्गुण निर्गुण निराकार स्वरूप सर्वाधिष्ठान। तो उसका क्या फल होगा? बोले आप जब सबके अधिष्ठान हो जाएंगे तो आपकी तो सब कामना खत्म हो जाएंगे। आपको न किसी कामना के फल की भोग की इच्छा होगी और न कामनाओं की जरूरत होगी, इसलिए कोई कामना आने की बात भी नहीं है। सुषुप्ति में चले जाते हो तो क्या आता है आपके पास? सुख 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 सुख, बस यही आता है। वहां पॉजिटिव सुषुप्ति में तो और सिवाय सुख के और कुछ नहीं है। मैंने कुछ नहीं जाना, इस पार्ट को मत लो। सुख को तो मैं जान रहा हूं ना, अनुभव कर रहा हूं। नारायण, ये इनके फल है। और अगर सातवें मंत्र की भावना कर ली, ओंकार का तो ध्यान करते हैं, और ये ध्यान कर लिया कि मैं तो सच्चिदानंद घन अद्वितीय ब्रह्म हूं, तो फिर उसके फल बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का कोई फल नहीं है। ब्रह्मवेद ब्रह्म ही भवति, बस जो ब्रह्म है सो ही हो। नारायण, ये मैंने 8, 9, 10, 11, 12 इनका भावार्थ कह दिया, क्योंकि वहां तक पहुंचना तो है ही नहीं, लेकिन वो फल रूप है तो वहां तक पहुंचो या मत पहुंचो, अपने को तो 7 मंत्र तक पहुंचना था। तो अभी तो है 6 दिन तो है। अच्छा, अब ये प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद माने विश्व विराट, तैजस हिरण्यगर्भ, प्राज्ञ ईश्वर, ये जो आत्मा के स्वरूप बताए, इनका एक सिंहावलोकन कारिकाकार करते हैं। कारिका उसको कहते हैं कि श्लोकबद्ध भाष्य। एक तो गद्य में प्रोज में मतलब भाष्य लिखे जैसे शंकराचार्य लिखते हैं, और ये शंकराचार्य भगवान के दादा गुरु हैं, गौड़पादाचार्य। शंकराचार्य भगवान के गुरु गोविंदपादाचार्य और उनके गुरु गौड़पादाचार्य। लोगों को ये मालूम नहीं है कि शंकराचार्य का नाम क्या। शंकराचार्य तो जानते हैं, लेकिन उनका संन्यास का क्या नाम था? तो शंकर तो उनका घर का नाम था शुरू का, मतलब संन्यास से पहले का नाम शंकर था। और आचार्य जो है, ये तो जब भाष्य आदि लिख दिए तब आचार्य हुए। तो गौड़पाद, गोविंदपाद, उसके बाद भगवतपाद, तो इनका नाम था शंकर भगवतपाद। और आचार्य होने के कारण ये शंकर भगवत पाद आचार्य ऐसा लंबा नाम हो जाता है ना, तो शंकराचार्य बस ये प्रसिद्ध हो गया। इसलिए आप जहां भी पुष्पिका लिखी है भाष्य के अंत में, तो शंकर भगवत पाद नाम दिया है। स्वामी महेशानंद की किताबों में आप देखना, वो अपने जैसे नीचे लिखते हैं ना श्री गुरु चरण कमलाश्रित, तो ऐसा कुछ नहीं लिखते हो, भगवत पाद ही है। तो हम तो शंकराचार्य के हैं बस, वो चाहे उनके परदादा गुरु मानो, चाहे दादा गुरु मानो, चाहे गुरु मानो, चाहे कोई भी गुरु, भगवत पाद ही है। ये और किसी ने, मैंने किसी किताब में किसी भी महात्मा ने लिखा नहीं देखा, उन्हीं के देखा। हो सकता है किसी और ने लिखा भी हो, मेरी नजर में नहीं आया। भगवत पादी, जो कुछ मैं कहता हूं बोलता हूं वो वही है जो भगवत पाद ने कहा है। माने शंकर, हम तो उनके दास हैं। तो अब इन तीनों पादों का एक सिंहावलोकन करते हैं, इसलिए कि हमें तो इस आत्मा को ब्रह्म जानना है। हमें सारे संसार में मैं विराट हूं, मैं हिरण्यगर्भ हूं, ये नारायण आप कितना भी बोलो, लेकिन ये शरीर का मटकोटा जो है ना, ये आपको बाहर निकलने देता नहीं है। अच्छा, जरा यूं बोल के देखो कि मैं ये हॉल के बराबर आकाश हूं, निकल जाओगे? भावना ही, भावना तो हो सकती है लेकिन आप निकल नहीं पाओगे, क्योंकि ये शरीर की जो बाउंड्री है इतनी ठोस है हमारे दिमाग में। लेकिन यदि हम भीतर घुसे हैं, और भीतर घुसे हैं तो कहां पहुंचेंगे, ये मत समझना बिंदु में पहुंचेंगे। बाहर तो इतना बड़ा ये शरीर दिख रहा है, इसके भीतर गए तो थोड़ा कम एरिया हुआ, फिर और भीतर गए थोड़ा कम एरिया हुआ, ऐसा नहीं है। आपका मन कहां पहुंच सकता है? कहीं भी पहुंच सकता है। तो ये आत्मदेव जो है, ये तो वही है जो ऑलरेडी पहले सब सर्वरूप है। तो यद्यपि आत्मा शब्द जो है वो एक जगह इंगित करता है, लेकिन आत्मा जो स्वरूपता जो है वो सर्वव्यापक है, इसलिए आप ब्रह्म तो हो ही जाते हो, कोई भाव करने की जरूरत नहीं है। तो ये विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, इन सबको जब तक अपने में धारण, माने आत्मरूप से धारण करने की नहीं सोचेंगे, तब तक ब्रह्म ज्ञान होना मुश्किल है। फैलाओगे तो थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ व्यापक हो गया, मेरी सामाजिक क्रियाएं शांति हो रही, लेकिन असली ब्रह्म ज्ञान तभी होगा जब आप भीतर घुसोगे। इस शरीर के भीतर घुसकर जो वो बिंदु है, वो बिंदु जो है वो फैलता है, वो फैलता हुआ मालूम पड़ेगा और फिर वो बिंदु भी समाप्त हो जाएगा, बस ब्रह्म ही ब्रह्म शेष रहता है। ये वेदांत में वैसे रहस्यवाद स्वीकार्य नहीं है, ये रहस्यवाद हुआ ना कि जाओ भीतर एक बिंदु दिखाई देगा, ये रहस्यवाद वेदांत में स्वीकार नहीं है। लेकिन पिन पॉइंटेडली अपने आप को कहीं बैठाने के लिए कुछ सोचना तो पड़ता ही है, तो इसको अध्यारोप के अंतर्गत ही सब मानते हैं। तो अब देखो कैसे ये गौड़पादाचार्य जी महाराज विचार करते हैं। महेश प्रज्ञो विभुर विश्वो यंतः प्रज्ञस्तु तैजसः घन प्रज्ञस्तथा प्राज्ञो एक एव त्रिधा स्मृतः। ये जो विश्व है ये विभु है, व्यापक है। व्यापक है माने वैश्वानर विराट है। कौन है ये? महेश्वरज्ञ। इसकी इस समय बुद्धि जो है वो बाहर की ओर देख रही है। तो ये विराट हो या विश्व हो, महेश्वरज्ञ है, लेकिन ये है तो आत्मा ही ना। अरे भाई चश्मा लगा लिया मैंने तो साफ देखने के लिए लगा लिया या व्यापक देखने के लिए लगा लिया? साफ दिखे जितना भी दिखे, अनंत तो नहीं दिख सकता इससे। तो ये क्या है कि बाहिश प्रज्ञ तो है, प्रज्ञा तो आत्मा का चश्मा है, ये बाहर की ओर देख रहा है। बाइफोकल में दो होती है ना, एक पास के पर्दे दूर के पर्दे की, तो ये विराट जो है ये दूर के पर्दे का चश्मा है बाहिश प्रज्ञ। और अंतः प्रज्ञास्तु तैजसा, और मन के भीतर में यदि देखने के लिए चश्मा लगाना हो तो आपको तेजस का विचार करना पड़ेगा, द्वितीय पाद का। ये मन में कौन बैठा हुआ है चैतन्य? ये आत्मा का ही नाम है, तेजस बोलो चाहे रन्यगर बोलो। और घन प्रज्ञस तथा प्राज्ञ, और सुषुप्ति में कौन रहता है? प्राज्ञ या इक्विवेलेंट सृष्टि में ईश्वर, तो वो क्या है कि घन प्रज्ञ। वो प्रज्ञान घन है, वो न बाहर देखता है न भीतर देखता है, वही स्तंभित है। सस्पेंडेड एनिमेशन आजकल नया टर्म चला है अखबारों में, विधानसभा भंग भी नहीं करते हैं और काम भी नहीं करती है। तो भंग नहीं हुई इसलिए तो चुनाव नहीं होंगे, और काम नहीं करती है तो सरकार गिरेगी नहीं। तो इसके लिए अंग्रेजी में शब्द निकाल दिया है कि दी असेंबली इज इन सस्पेंडेड एनिमेशन। तो ये सुषुप्ति क्या है हमारी? ये काम नहीं कर रही है लेकिन सस्पेंडेड है, बस एनिमेशन तो है, प्राण तो चल रहा है इसमें, शरीर की क्रियाएं भीतर भीतर सब हो रही है लेकिन बाहर कुछ नहीं है, सच सस्पेंडेड एनिमेशन। तो ये इसी को घन प्रज्ञ बोलते हैं, प्रज्ञान का घनी भाव हो गया। तो इसमें क्या विचार करना है कि एक एव त्रिधा स्मृता, ये तीन नहीं है, एक के ही ये तीन नाम हैं। उपाधि उपाधि बदलती जाती हैं तो नाम भी बदलते चले जाते हैं। अब इसमें एक को लेकर के भाष्यकार ने कहा है कि ये एक कैसे है कि पर्यायेण त्रिस्थानत्वात् सोहम इति स्मृत्या प्रतिसंधानात् जो। क्या आपको ऐसा लगता है कि जब मैं बाहर देख रहा था तो मैं कोई और था, और जब मैं भीतर देखता हूं तो मैं कोई और हो जाता हूं, और सुषुप्ति में जाता हूं तो मैं मर जाता हूं या मैं कोई और हो जाता हूं? ऐसा तो नहीं लगता है ना? तो मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं, ये वही हूं जो ये ज्ञान है इसको प्रतिसंधान बोलते हैं। एक का ही तीन जगह प्रतिसंधान हो रहा है, इसलिए एक एव त्रिधा स्मृता, एक रहते हुए ही तीन नामों से इसका ज्ञान होता है। अब इसमें कहते हैं कि एक के साथ में ये चीजें और लगा दो, स्थानत्रय व्यतिरिक्तम एकत्वम शुद्धत्वम असंगत्वम च, तीनों में रहता हूं तो मैं तीन से कुछ विलक्षण हूं कि यही तीन हूं। अगर विश्व हूं तो तेजस कैसे हो जाता हूं फिर, और तेजस हूं तो विश्व कैसे हो जाता हूं, प्राज्ञ कैसे हो जाता हूं। तो इसका मतलब है कि होता तो मैं ही हूं, तो मैं कुछ इन तीनों से विलक्षण हूं। विलक्षण माने कोई एक लक्षण ऐसा है जिसकी वजह से ये तीन चाहे रहो तब भी मैं हूं, और तीन चाहे ना रहो तब भी मैं हूं। एकत्वम हो ही गया, और शुद्धत्वम मैं शुद्ध भी हूं, उपाधि से उपहित जो है वो अशुद्ध नहीं होता, ऐसा जरा समझना तो पड़ेगा आपको। जैसे दर्पण के आगे अपना मुंह ले जाओ और मान लो दर्पण अशुद्ध है तो आपका मुंह अशुद्ध हो गया क्या? लेकिन कभी कभी होता है कि दर्पण की अशुद्धता का पता नहीं होता है, कहते हैं ये काला काला क्या लग रहा है, रगड़ रहे हैं मुंह को ना रहे। अब वहां होए तो वो मिटे, वो तो दर्पण के ऊपर है। तो स्फटिक मणि के पास लाल फूल रख दो तो वो स्फटिक लाल दिखने लगती है, पीला रख दो तो पीली दिखने लगती है। तो वो उपाधि का धर्म उपहित में आ रहा है, उपहित का वास्तव में धर्म नहीं है, तो वो तो शुद्ध ही रहता है, अशुद्ध नहीं होता है। तो जागृत अवस्था आई तो मैं लगने लगा कि मैं बहिष्प्रज्ञ हूं, स्वप्न अवस्था आई तो मैं अंतःप्रज्ञ हो गया। ये सब अवस्थाओं के परिवर्तन से अपने में परिवर्तन आ रहे हैं, ये मेरे में परिवर्तन आ रहे हैं ऐसा नहीं है। अच्छा, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति आप लाते हो क्या, ये अपने आप आती हैं? अपने आप क्यों आती हैं भाई? अब इस समय अपने अपने घरों में जो लोग होंगे वो कोई सत्संग में थोड़ी बैठे होंगे, कोई सो भी रहा होगा हो सकता है अभी। और नहीं तो अमेरिका में शायद सो रहे हों या कहीं दूसरे देश में सो रहे हों जहां रात होगी। तो पूरी दुनिया का इस हिसाब लगाओ तो यहां तो जागृत हो रही है और वहां सुषुप्ति हो रही है, ये क्या चक्कर है? बोले चक्कर कुछ नहीं है, ये मशीन जो है इसका चक्कर है सब, इसकी प्लानिंग। ये सांस चलती है ना, ये सांस के कारण वृत्ति परिवर्तन होता है। जब तक सांस चलेगी कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहेगा, अपने आप ही जागृत हो जाती है, अपने आप ही स्वप्न हो जाता है। भूख भूख क्यों लगती है भाई? ये सांस चलती है इसलिए भूख लगती है। तो वेदांत में ही तो बताया जाता है ना कि आत्मा का धर्म नहीं है भूख प्यास, ये तो प्राण का धर्म है। तो प्राण का धर्म माने प्राण की वजह से ही भूख प्यास लगती है कि नहीं, वो लीवर की वजह से जो है भूख लगती है, तुम्हारा लीवर कमजोर हो गया। अरे तो वो तो सहायक है, प्राण ही बंद हो जाए तो लीवर अच्छा हो तो क्या कर लेगा कोई। ये प्राण मुख्य है। तो शुद्धत्वम और असंगत्वम चार, तीनों चारों अवस्थाओं में कहीं भी पहुंच जाओ ये अशुद्ध नहीं होता है, किसी से लेप इसका नहीं होता है। महाराज जी तो कहते हैं कि तत्व जितना भी है वो सब अलिप्त ही रहता है। बताओ आपकी आंख किसके साथ चिपक गई, कितने दृश्य देखे हैं अब तक, ये आंख किसी के साथ चिपक गई क्या? आंख तो अपनी जगह है, वस्तुएं आई दिखी, थोड़ी देर के लिए टकटकी लगा के भी देख लिया होगा, हो सकता है उसका संस्कार भी भीतर अंतःकरण में पड़ गया हो, लेकिन आंख तो निकल करके किसी के साथ चिपकी नहीं है। ये आसक्ति जो है ये भ्रम है। एक बार असली और कहते शक्ति माने चिपक, तो आसक्ति माने अरे ओ शक्ति आ चिपक जा मेरे से। आप तो किसी से चिपकते नहीं हो, लेकिन आप जबरदस्ती उस चिपक को अपने पास बुलाते, अरे कुछ जा रहा है तो जाने दो यार, तुम क्यों उसके पीछे पीछे भाग रहे हो? अब मैं तो रात को 9 बजे और मैंने मोबाइल ऑफ किया, तो और लोग बोला अरे साहब किसी का इम्पोर्टेंट कोई बात हो वो कोई सूचना आवे तो आपको फिर कैसे होगी? मैंने कि मेरे लायक इम्पोर्टेंट होगी और कोई देगा तो सवेरे फिर करेगा वो। मैं इस वजह से उस मोबाइल को चालू रखूं रात में और अपनी नींद खराब करूं ना रहे। तो कोई आता है तब ठीक है, स्वागतम स्वागतम, जाता है तो गच्छ गच्छ महादेव। ये कहते हैं महात्मा का धर्म है, ये गृहस्थों का धर्म नहीं है। नारायण गृहस्थ में दिखावा भले ही करो, लेकिन भीतर से महात्मा का ही धर्म अपनाना पड़ेगा, तब तो आप सुखी रहोगे। और बाहर भीतर दोनों तरह से दिखावा करने लगोगे तो फंस जाओ। कोई किसी का मन से नहीं चाहता, सब अपने अपने स्वार्थ से ही सब बने होते हैं। हम भी किसी दूसरे को यदि चाहते हैं तो जरूर हमारा कोई ना कोई उसमें स्वार्थ, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है। तो प्रेम जो है वो सर्व सबसे किया जाता है, किसी एक से जो प्रेम किया जाता है उसका नाम प्रेम नहीं है, वो आसक्ति है। और जो सबके प्रति होता है वो प्रेम होता है। भगवान श्री कृष्ण प्रेम करते हैं, लेकिन गोपियां श्री कृष्ण में आसक्त होती हैं। वो प्रेम तो करती हैं, लेकिन चूंकि उनके बिना अपने को जीरो मानती हैं, इसलिए वो आसक्त होती हैं, रोती हैं, धोती हैं। लेकिन वो 100 वर्ष का जो वियोग भगवान ने उनको दे दिया, तो उससे वो समझ गए कि कोई किसी का नहीं है। जब कुरुक्षेत्र में मिली हैं तो वहां का प्रसंग पढ़ो नारायण, तो जब श्री कृष्ण ने माफी मांग ली, अरे भाई गोपियों हम तो कह तो गए थे आने की, लेकिन ऐसे काम काजों में फंस गए तो नहीं आ पाए। अब ऐसे करके कोई बोले तो ठीक है चल माफ किया। तो उनका जो प्रणय कोप था वो शांत हो गया, और सिर्फ 2 श्लोक भगवान ने वहां बोले ज्ञान के, और सुखदेव जी ने कहा कि उनका जीव कोष ध्वंस हो गया 2 श्लोकों में। और उद्धव जी को कितने 8-10 श्लोक मतलब लिख के दिए, और उन्होंने वो जो कहते हैं सुना भी दिए उनको, लेकिन वो तो प्रणय कोप में डटी हुई थी। दूरहट आया बड़ा दूत बन करके, तो वो जो 2 श्लोक भगवान ने बोले वो कुछ नए श्लोक नहीं है, उन्हीं 8-10 के में से ही है 2। तो वो प्रणय कोप के कारण वो भीतर घुसे ही नहीं। जब प्रणय कोप शांत हो गया माने शांत अवस्था हो गई चित्त की, अरे 2 श्लोक तो बहुत होते हैं, तत्वमसी कहीं से सुनाई पड़ जाए तो आदमी को ज्ञान हो जाता है यदि चित्त शांत है तो। तो ये एक एव त्रिधा स्मृतः, बस इसमें ये बात पकड़नी है कि तीन अवस्थाओं में मैं तीन नहीं हो जाता हूं, मैं वही रहता हूं। और जो कुछ भी ये मालूम पड़ता है कि मेरे में अब ये धर्म आ गया, ये धर्म आ गया, वो मेरे नहीं है, वो उपाधि के धर्म है, इसलिए मैं उनसे लिप्त नहीं होता। अब बोले कि इन तीनों अवस्थाओं में मैं रहता कहां हूं, कहां रहता हूं, तीन जगह रहता हूं। बोले त्रिधा देह व्यवस्थिता, तीन देहों में रहता हूं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। तो जब व्यवहार करता हूं तो कहां रहता हूं, तो मुख्य रूप से स्थूल शरीर में रहता हूं। जैसे जब मैं ऑफिस जाता हूं, घर में ही ऑफिस बना रखा है तो बात दूसरी है, लेकिन घर से बाहर है यदि ऑफिस, तो आप ऑफिस में ही तो जाके बैठोगे तभी काम करोगे ना। तो ये ऑफिस है, जब विराट का जागृत अवस्था का व्यवहार करते हैं, और जब स्वप्न अवस्था का व्यवहार करते हैं तब कहां बैठते हैं, तो बोले अपने घर में जाकर के। ड्राइंग रूम में भी बैठने की जरूरत नहीं है, वहां भी कोई ना कोई आ जाएगा, तो भीतर जाकर बैठो, चाहे बाल बच्चों से खेलो और चाहे सो, डर है। तो यही है अंतःप्रज्ञ हो गए। महाराज जी कहते हैं कि तुम ये कोई वैज्ञानिक अपनी लेबोरेटरी में जब काम करता है तो वो अंतःप्रज्ञ होता है। अच्छा, अब आ गई सुषुप्ति, तो शरीर में कहां चले गए, तो वृत्ति कहां से उदय हुई थी। मैंने अभी बताया ना, ये प्राण के चलने से ये सारी वृत्ति परिवर्तन होता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये भी सब वृत्तियां ही हैं। तो सुषुप्ति आ गई तो ये वृत्तियां कहां चली गई सब, तो बोले प्राण में से ही उदय होती हैं, और सुषुप्ति में प्राण चलता रहता है, इसलिए प्राण में ही जाकर के लीन हो जाती, उस समय सब प्राण रूप है। ऐसे उठाओगे ना हाथ, हाथ से किसी सोते हुए आदमी को, तो खट से उठ जाएगा, क्योंकि प्राण तो शरीर के हर हिस्से में चलता है। और बोले कि अरे देवदत्त उठ, तो वो देवदत्त नाम का जो है वो तो कान से सुनेगा, तो वो कान में जो प्राण है सिर्फ उतने हिस्से को ही टच करेगा, और ऐसा शरीर झकझोर हो गए तो उठ जाएगा, क्योंकि सारे शरीर में प्राण चल रहा है। ये उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में है। तो दक्षिणाक्षि मुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तैजस आकाशे च हृदि प्राज्ञ त्रिधा देहे व्यवस्थितः। विश्व जो है वो दाई आंख में बैठता है बाहर की दुनिया देखने के लिए, या दाई का मतलब सभी इंद्रियां समझनी चाहिए, आंख तो उसका एक लक्षण है, एक इंद्रिय का नाम दे दिया। और मनसी अंतस्तु तेजस, और तेजस जो है वो मन में बैठ करके काम करता है। और आकाशे च हृदि प्राज्ञ, और प्राज्ञ जो है वो हृदय आकाश में बैठ करके काम करता है। अब हृदय आप कहां मानते हो नारायण, ये पंपिंग स्टेशन का नाम यदि हृदय मानते हो तो वो तो ये भी सकता है, क्योंकि अगर यही बंद हो जाए तो प्राणी चलना बंद हो जाएगा। लेकिन उपनिषद में ऐसा लिखा है कि प्राणम उन्नयति, क्या है, अपानम प्रत्यगस्यति, और मध्य वामनासीनम विश्व देवा देवे देवा उपासते, कठोपनिषद की श्रुति है। बोले एक स्थान यहां ऐसा है कि वो प्राण को ऊपर भेज रहा है, अपान को नीचे भेज रहा है, वो उसी स्थान में वामन भगवान बैठे हुए हैं, विष्णु सारे देवता उसी की उपासना करते हैं। तो ध्यान के लिए वहां पर ये प्रसंग है। महाराज जी ने उस मंत्र की जो व्याख्या की है अपने कठोपनिषद प्रवचन में, वो पढ़ने लायक है, काफी लंबी व्याख्या है। तो त्रिधा देह व्यवस्थिता, ये तीनों देहों की व्यवस्था है, विश्व स्थूल शरीर में और तेजस सूक्ष्म शरीर में मन में, और प्राज्ञ कारण शरीर में अर्थात हृदयाकाश में। या आकाश जो है ब्रह्म का वाचक है, जहां ये ब्रह्म बैठा हुआ यही काम करता है, ऊपर नीचे यही जीवात्मा के रहने का भी स्थान है। हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि